नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने वाले ऑनलाइन मंच जोमैटो ने सोमवार को कहा कि उसने बैटरी स्मार्ट के चार्जिंग स्टेशन पर अपने डिलीवरी पार्टनर को बैटरी स्वैपिंग सेवा प्रदान करने के लिए उसके साथ साझेदारी की है। बैटरी स्वैपिंग या बैटरी स्विचिंग एक इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक है जिसमें चार्जिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बदली जाती है। कंपनी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, साझेदारी के तहत जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर 30 से अधिक शहरों में बैटरी स्मार्ट के 800 से अधिक स्वैप स्टेशनों का इस्तेमाल कर पाएंगे। जोमैटो के मुख्य परिचालन अधिकारी रिंशुल चंद्रा ने कहा, बैटरी स्मार्ट के साथ साझेदारी से हमारे डिलीवरी पार्टनर बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के विशाल व सुलभ नेटवर्क का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जोमैटो ने 2030 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है और वह क्लाइमेट ग्रुप के ईवी 100 अभियान में शामिल हो गया है। भारतीय होजरी उद्योग की आय चालू वित्त वर्ष में 18 से 20% बढ़कर 36,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण मांग में तेजी आने के साथ ये साल होजरी उद्योग के लिए अच्छा रहेगा। क्रिसिल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बढ़ती मुद्रास्फीति और किसानों की कम आय के कारण पिछले वित्त वर्ष में ग्रामीण मांग प्रभावित हुई, जिसकी घरेलू राजस्व में लगभग आधी हिस्सेदारी है। इस दौरान सालाना आधार पर कुल बिक्री में 30% की गिरावट हुई थी। प्याज निर्यात पर 40% शुल्क लगाने के केंद्र के फैसले के विरोध में महाराष्ट्र के नासिक जिले में सभी कृषि उपज बाजार समितियों में अनिश्चितकाल के लिए प्याज की थोक बिक्री रोक दी गई है। सूत्रों ने बताया कि फैसले के मद्देनजर सोमवार को जिले के अधिकतर एपीएमसी में प्याज की थोक बिक्री बंद रही, जिसमें भारत का सबसे बड़ा थोक प्याज बाजार लास लंगाव भी शामिल है। व्यापारियों का दावा है कि 31 दिसंबर 2023 तक प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने के केंद्र सरकार के फैसले से प्याज उत्पादकों और इसके निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नासिक जिला प्याज व्यापारी संघ की रविवार को ही बैठक में यहां प्याज की थोक बिक्री अनिश्चित काल के लिए बंद करने का निर्णय किया गया। रियल एस्टेट कंपनी भूमिका समूह अपनी विस्तार योजना के तहत फरीदाबाद में एक हाई स्ट्रीट रिटेल परियोजना विकसित करने के लिए 600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक उद्धव पोद्दार ने पत्रकारों से कहा, हमने एक स्थानीय रियल एस्टेट कंपनी अमोलिक समूह के साथ एक संयुक्त विकास समझौता किया है, जिसके पास फरीदाबाद में 5 एकड़ भूमि का स्वामित्व है। हम अगले 4 वर्षों में इस भूमि खंड पर 5.5 लाख वर्ग फुट हाई स्ट्रीट रिटेल विकसित करेंगे। निवेश पर किए गए सवाल के जवाब में पोद्दार ने कहा कि कुल परियोजना की अनुमानित लागत 600 करोड़ रुपए है। कंपनी ने राजस्थान के उदयपुर में अपनी रिटेल परियोजना का पहला चरण पहले ही पूरा कर लिया है। भारतीय सोया खली के निर्यात में सुधार का क्रम जुलाई में जारी रहा और ये 2 गुना से ज्यादा बढ़कर 75,000 टन पर पहुंच गया। पिछले साल जुलाई में देश से 31,000 टन का सोया खली का निर्यात हुआ था। प्रसंस्करणकर्ताओं के इंदौर स्थित संगठन सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सोमवार को ये जानकारी दी। सोपा के आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा तेल विपणन वर्ष के शुरुआती 10 महीनों में देश से 16.72 लाख टन सोया खली का निर्यात किया गया। ये पिछले तेल विपणन वर्ष में अक्टूबर से जुलाई के बीच किए गए टन के 5.95 लाख टन के सोया खली निर्यात से 181% ज्यादा है। प्रसंस्करण कारखानों में सोयाबीन का तेल निकाल लेने के बाद बचने वाले उत्पाद को सोया खली कहते हैं। ये उत्पाद प्रोटीन का बड़ा स्रोत है। इसे सोया आटा और सोया बड़ी जैसे खाद्य पदार्थों के साथ पशु आहार तथा मुर्गियों का दाना भी तैयार किया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 56 करोड़ रुपए की वसूली के लिए अभिनेता एवं भारतीय जनता पार्टी के सांसद सनी देओल की संपत्ति की नीलामी फिलहाल रोक दी है। बीओबी ने सोमवार को कहा कि तकनीकी कारणों से प्रक्रिया वापस ले ली गई है। बैंक की ओर से रविवार को जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि बैंक मुंबई के टोनी जूहू इलाके में गांधी ग्राम रोड पर स्थित सनी विला की संपत्ति कुर्क की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य 51.43 करोड़ रुपए और 5.14 करोड़ रुपए की बयाना राशि तय की गई। ऑनलाइन माध्यम से 25 अगस्त को ये नीलामी की जाएगी। बीओबी ने सोमवार को जारी ऐसे ही एक नोटिस में कहा कि 20 अगस्त को जारी नोटिस को तकनीकी कारणों से वापस लिया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री से अलग हुई वित्तीय सेवा इकाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर सोमवार को बाजारों में सूचीबद्ध किए गए। बीएसई पर कंपनी के शेयरों ने 265 रुपए पर कारोबार शुरू किया, जो 261.85 रुपए के मुकाबले 1.20% अधिक है। कंपनी ने शेयर को सूचीबद्ध करने के लिए 261.85 रुपए का मूल्य तय किया था, हालांकि बाद में ये 3.85% गिरकर 251.75 रुपए पर आ गया। एनएससी में कंपनी के शेयर 262 रुपए मूल्य पर सूचीबद्ध किए गए, बाद में ये 4.94% गिरकर 248.90 रुपए पर आ गया। सोमवार को शुरुआती कारोबार में कंपनी का बाजार मूल्यांकन 1,59,943.93 करोड़ रुपए रहा। JFSL पिछले महीने रिलायंस से अलग हुई थी और 261.85 रुपए मूल्य निकलने के बाद ये डमी के तौर पर सूचीबद्ध थी, लेकिन इसमें कोई कारोबार नहीं हो रहा था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।